भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वान डेर लेयन की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा।
समझौते के बाद वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही।
हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में यह एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा।
इस अवसर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा,
Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth and sustainable development.
सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत एक प्रमुख ताकत के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,
As we go into 2029, by the time the Semicon 2.0 would also be maturing, India will become a major player in semiconductor industry. We have studied how Taiwan, Japan, South Korea and other countries have done this journey. And after studying that and based on the talent that we have charted out our path towards 2 nanometer in the coming years. By 2035, the entire world now believes that India will be among the most important semiconductor nations in the world.
हरियाणा और पंजाब के बीच पानी विवाद के हल को लेकर बातचीत हो रही है। दोनों राज्यों के बीच सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। मंगलवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई है, हालांकि इसमें कोई खास नतीजा नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद हुई इस बैठक को सार्थक बताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं,
पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे।
चंडीगढ़ में हुई इस बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा,
गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा।
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी यानी रविवार को बजट पेश होना है। इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी तैयार है। साझा रणनीति को तैयार करने के लिए आज विपक्षी नेताओं की बैठक होने वाली है। मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें सत्र के दौरान उठने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता नासिर हुसैन ने बताया कि महंगाई से लेकर विदेश नीति पर सरकार से सवाल पूछा जाएगा।
जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू देश के सामने है, जो फॉरेन पॉलिसी का इशू, जहाँ पे टैरिफ्स की बात हुई है, लगातार यूएस थ्रेटन कर रहा है, रशियन ऑयल को लेकर थ्रेटन कर रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी में जो डिविएशन आ रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी पे लगातार जो मार पड़ रहा है उसको हम रेस करेंगे। उसके अलावा जो लगातार रुपी गिर रही है, जिसके वजह से बहुत सारा डिसरप्शन इकोनॉमी में हो रहा है, उसके वजह से बहुत सारे हमारी इकोनॉमी में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, बहुत सारे नुकसान जो हमारे एमएसएमई सेक्टर को उसकी वजह से हो रहा है, और सारे सेक्टर को, इकोनॉमिक सेक्टर को उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, इस इशू को भी रेज करेंगे हम लोग।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने शैक्षिक संस्थाओं में भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसका छात्रों का एक वर्ग विरोध कर रहा है। दरअसल उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और आत्महत्या को रोकने के लिए UGC ने समानता कमेटी और निगरानी दस्ते बनाने की बात कही है। इसको लेकर 13 जनवरी को जारी दिशा निर्देशों ने समाज में तीखा बहस छेड़ दिया है। सामान्य वर्ग के छात्र और कई संगठन इन नियमों को एकतरफा और दमनकारी बता रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC का बचाव करते हुए कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा।
कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा।
इस बीच इन नियमों को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।